हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ दिनों में हमने पहला 3 श्लोकों का उपदेशामृत का चर्चा किया और पिछले 2 श्लोकों में 6 चीज जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति, और 6 चीज जो भगवान की भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्यागात सतोवृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, इन दोनों का चर्चा हो गया। आज हम 4th श्लोक जो बहुत और एक महत्वपूर्ण श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पीछे आप बोल सकते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। अनुवाद, दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार लेना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, ये 6 भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार का लक्षण है। रूपा जी इसके तात्पर्य में शुरुआत करते हुए कहते हैं कि इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति कार्यों को करना चाहिए। कल हमने सुना पिछले 2 श्लोकों में जनसंगश्च छोड़ना चाहिए, षड्भिर् भक्ति विनश्यति जनसंग का छोड़ना चाहिए, और अनुकूल चीज में भी सुना संग त्याग, असत्संग को त्याग देना चाहिए, ये वैष्णव का लक्षण है, असत्संग त्याग ये वैष्णव आचार। पर मनुष्य है एक सामाजिक जीव है और सामाजिक जीव होने के कारण समाज में रहना उसका बहुत जरूरी है, आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई समझता है कि मैं अकेले रहकर भक्ति करूंगा वो पागलपन है। कलयुग में अकेले रहकर कोई भक्ति नहीं कर सकता, अगर वो महाभागवत हो माधवेंद्रपुरी जैसा और उसे एक भक्त भी दूसरा नहीं मिले तो, क्योंकि डायरेक्टली परमात्मा के साथ उसका हमेशा संपर्क है, वो भी अकेला नहीं रहता, वो एक्चुअली भगवान के साथ हमेशा निवास करता, पर हम उस स्तर पर नहीं। इसीलिए हमें सामाजिक जीव है तो एक समाज में रहना जरूरी, पर भौतिक समाज में रहेंगे तो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भक्तों का समाज बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा पूर्वक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक भक्तों का समाज का निर्माण किया है, जहां जो संघ की इच्छा है, सामाजिक एक समाज में रहने की इच्छा, प्रेममयी आदान प्रदान करने की इच्छा, ये भी पूर्ण हो जाएगा और साथ साथ में अपना जो जीवन का लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाएगा। अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम, कृष्ण की शरणागति का लक्षण है, जो भी अनुकूल है उसको स्वीकार करना। तो ऐसे भक्तों के संग में एक ऐसे समाज में रहना और रहकर आपस में प्रेममयी रिश्ता आदान प्रदान करना ये बहुत जरूरी है। और ये कैसा करना है ये भी एक विज्ञान है। एक्चुअली प्रेममयी रिश्ता स्थापन करना भी एक विज्ञान है, एक्चुअली इट्स अ साइंस, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और इसीलिए ये प्रेममय रिश्ता भक्तों के संग में स्थापन करना बहुत जरूरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक भौतिक रिश्ता और एक आध्यात्मिक रिश्ता जहां कृष्ण केंद्र है उसका भेद समझाते हुए बहुत सुंदर उदाहरण देते। भौतिक रिश्ता जहां, इसका मतलब है कृष्ण केंद्र नहीं है और कुछ केंद्र है, समाज केंद्र है, देश केंद्र है, या परिवार केंद्र है, या शरीर का कोई भी दूसरा डेजिग्नेशन उपाधि वो केंद्र है। जैसा एक समाज होता है, एक जाति का एक समाज होता है, समाज का वो संघ होता है, वो संघ का केंद्र क्या है, हम दोनों वही समाज है, पंजाबी समाज, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, बंगाली समाज, या कोई देश का, अब पाश्चात्य देश में जाएंगे तो इंडियन और साउथ इंडियन एसोसिएशन ऐसा, पर वो सब का केंद्र जो है वो शरीर के संपर्क में। तो इस एक संबंध में और एक आध्यात्मिक संबंध में अंतर क्या है बताते हुए कहते हैं कि ये भौतिक संग जो है वो एक मिट्टी का मटका जो होता है, मिट्टी के बर्तन के समान, मटके के समान, और भक्तों का संग, भक्तों का संग मतलब जहां कृष्ण केंद्र है उस केंद्र को वो कहते हैं कि सोने का बर्तन के समान। क्यों? मिट्टी का बर्तन जो है टूटना बड़ा आसान है पर जोड़ना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा भी थोड़ा ठक टूट गया, और क्योंकि उसको ऑलरेडी गर्म इसमें कड़क किया जाता है, एक बार टूट गया तो उसको फेंकना पड़ेगा, उसको जोड़ नहीं सकते। पर आध्यात्मिक समाज जहां जो रिलेशनशिप या संबंध है वो कृष्ण को केंद्र में रख के किए हैं, वो संबंध कैसा है, सोने के बर्तन के समान, टूटना बड़ा मुश्किल है और जोड़ना बड़ा आसान है, थोड़ा गर्म कर दो, थोड़ा पास में ला दो, कुछ झुक जाते। तो ऐसा संबंध कैसा स्थापित किया जाए, ये यहां वर्णन है। कनिष्ठ भक्त जो है वो सिर्फ मैं हो गया, भगवान हो गया, बस, वो बहुत कनिष्ठ भक्त है। वो आता है सीधा मंदिर में आएगा, भगवान का दर्शन करेगा, चला जाएगा, उसको भक्तों से कुछ लेना देना नहीं। पर मध्यम, हाँ, उत्तम भक्त जो है वो तो सबको, सब में भगवान को देखता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं। पर हम जैसे लोग जो कनिष्ठ में स्तर पर नहीं रहना चाहते हैं पर कम से कम मध्यम स्तर पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर प्रगति करना चाहते हैं, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना चाहते हैं और प्रतिकूल चीजों को त्यागना चाहते हैं, तो भक्तों के संग में बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कैसा यहां स्थापित किया जाए, यहां प्रभुपाद बता रहे हैं। ये कार्य छह प्रकार के हैं, जो रिश्ता स्थापित करना कैसा स्थापित किया जाए, यानी इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। कभी कभी लोगों को कंप्लेंट होता है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरे को कोई भी जब किसी के साथ मेरा जमता नहीं, क्यों? क्योंकि हमने कोई कोशिश नहीं किया है। इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, बैठे बैठे नहीं होगा, एक विज्ञान है, हमको स्थापित करना पड़ेगा। आप देखेंगे तीन चीज ददाती, ददाती मतलब देना, मतलब हमारी ओर से कुछ देना चाहिए, फिर प्रतिग्रहण आती, वो कुछ देंगे, फिर गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते, आदान प्रदान, ये छह में तीन हमारी ओर से, तीन दूसरे की ओर से, ये टू वे ट्रैफिक है। रिश्ता जो है, कोई भी रिश्ता, रिलेशनशिप, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सब लोग मुझे प्रेम करना चाहिए, सब लोग मेरे अच्छे से, अरे ऐसा कैसा होगा, ऐसे तो भगवान के साथ भी रिश्ता नहीं होगा, भगवान के घर आएंगे, पुत्रम पुष्पम फलम तो कुछ देंगे, तब तो भगवान के साथ रिश्ता होगा। कम से कम आना तो होगा, सामने खड़ा तो होना होगा, नहीं तो रिश्ता स्थापित नहीं होगा। तो रिश्ता मतलब टू वे रिलेशनशिप, और टू वे में सबसे पहले हमको शुरू करना चाहिए। हम अपेक्षा नहीं करते सब लोग अपने आप आएंगे, नहीं, हमको अपनी कोशिश क्या क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, एक विज्ञान है, अगर उसको हम जानेंगे। और ये करना जरूरी है क्योंकि हमको अगर प्रगति करना है तो भक्तों के संग में रहना है, संग में रहना है तो अच्छा रिश्ता स्थापित करके रहना है, और अच्छा रिश्ता स्थापित करना है तो विज्ञान समझना चाहिए। इसीलिए तो वो इतना बड़ी पुस्तक लिखे हैं आचार्यों ने। पुस्तक क्यों दिया है? मार्गदर्शन करने के लिए। जैसा उपदेशामृत की शुरुआत में हमने पढ़ा, हम जैसे नवसुखिया भक्तों के लिए, नवदीक्षित भक्तों के लिए ये दिया गया है कि ये ऐसा अगर तुमको सीढ़ी गंभीरता से तुम प्रगति करना चाहते हो तो इसको अपनाओ। आसान नहीं है कोई रिश्ता स्थापित करना इस भौतिक संसार में, स्थापित करना ठीक है पर मेंटेन करना बहुत मुश्किल। कोई भी चीज स्थापित शुरू करना आसान है, खत्म करना एक क्षण में, बस चुप निकलो यहां से, हो गया खत्म। मेंटेन करना सबसे बड़ा बड़ी बात, और मेंटेन कैसा करना है वो यहां बताएगा। ये कार्य छह प्रकार के हैं, भक्तों को दान देना ददाति, और बदले में भक्तगण जो अर्पित करें उसे स्वीकार करना प्रतिग्रहणाति, भक्तों से अपने मन की बात कहना गुह्यम आख्याति, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना पृच्छति, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना भुंगते, और भक्तों को प्रसाद खिलाना भोजयते। षड्विधम प्रीति लक्षण। और आप इस श्लोक, आप अगर तात्पर्य इसको पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने एक एक वाक्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच ये छह प्रकार के आचार परम आवश्यक है। एक प्रेमी मित्रों के बीच अगर प्रेमी मित्र बहुत समय से संबंध है, चल रहा है, मेंटेन हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब ये छह प्रकार के आदान प्रदान हो रहे हैं। प्रभुपाद सुंदर समझाते हैं, एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन के साथ रिश्ता स्थापित करना है तो क्या करता है, उसको मिलेगा और कहेगा फोन पे के ये होटल में आप आ जाओ ना शाम को एक पार्टी के लिए, ठीक है, तो उसको बुलाएगा, बुलाया मतलब भोजे थे, आपको मैं खुद खुलाऊंगा, आएंगे और मेन्यू सामने रखता है, आपको क्या अच्छा लगता है मंग, बोल कुछ भी ऑर्डर कीजिए चलेगा, ये आइटम ओके, मेरे को भी अच्छा लगता है, चलो वो दो करेंगे, दो ऑर्डर कर लिए। तो भोजे थे, पहले उसने बुलाया और फिर वो आइटम आया और दोनों खा रहे हैं प्रेम से, खाते खाते एक बोलता है, देखो एक्चुअली तुम्हें बुलाने का ऐसा है कि मैंने एक बिजनेस खोलने का इंतजाम किया, ऐसा ऐसा सा मेरा प्लान है, मतलब अंदर की हृदय की बात बतला रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप बड़े यू नो इसमें अनुभवी व्यक्ति हो तो आपका योगदान या आपका मदद या आपका थोड़ा ब्लेसिंग थोड़ा रहेगा तो कर सकते हैं, मैं चाहता हूं आप, मतलब आपको क्या लगता है इस एरिया में ऐसा बिजनेस चलता है क्या? बोलेगा हाँ, मतलब किसी को भी पूछे तो अच्छा लगेगा, चलो सजेशन देंगे ये वो। तो हृदय खोल के थोड़ा बातचीत करते हैं और फिर जाने से पहले कुछ तो एक छोटा सा उपहार देगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छा कुछ सजेशन दिया। एक घंटे के अंदर वो लोग होटल से बाहर निकलते हैं, दोनों वही व्यक्ति हैं पर अभी दोनों में एक अंतर हो गया है, दोनों के हृदय के बीच में एक छोटा सा गांठ बन गया कि वो मेरा थोड़ा पहचान का आदमी हो गया, उसको मैं पहचानता हूं, उसको मैं जानता, मतलब थोड़ा उसका हृदय और हमारा हृदय का थोड़ा समान कुछ है, सिंपल। और इस तरह से वो कभी बुलाता है, हम कभी बुलाता है, इस तरह से होते 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 गाढ़ा हो जाता है। कोई रिश्ता अपने आप नहीं होगा, बाय चांस बैठे बैठे नहीं होगा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सिंह सोता रहेगा, बोलेगा मैं राजा हूं, सब लोग आके मुझे पढ़ा, नहीं चलेगा, उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो ये यहां समझा रहे हैं कि कहीं भी आप प्रेममय रिश्ता देख रहे हैं, प्रेम मतलब आदान प्रदान, लव इज डायनेमिक, लव इज नॉट वन साइडेड। भगवान के साथ भी हमारा प्रेम जो है आदान प्रदान, प्रेम मतलब आदान प्रदान, यानी टू वे प्रोसेस। अब देखिए पिछले श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को सांसारिक संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संगात संगत्यागात सतो वृत्ते बताए। अब सुनिए रूपा क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन छह प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। एक्चुअली इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मिशन, वन ऑफ द पर्पस, ये स्थापना संस्थापन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना करने का एक उद्देश्य, वन ऑफ द पर्पस, सात उद्देश्य आप देखेंगे। प्रभुपाद जी ने जब 1965-66 में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का किया तो उन्होंने सात चीज लिखा, सेवन पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, और उनमें से एक वन ऑफ द पर्पसेस मिशन स्टेटमेंट। कोई भी एक संस्थापना करते हैं ना, संस्था जब स्थापन करते हैं, इस संस्था का उद्देश्य क्या है लिखते हैं, सात उद्देश्य। एक्चुअली हर एक भक्त को जो सही में इस संस्था का आदर्श सदस्य बनकर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, ये सात उद्देश्यों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, मतलब रट लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए। और उनमें से एक है टू ब्रिंग द मेंबर्स क्लोजर टू ईच अदर एंड क्लोजर टू द प्राइम एंटिटी कृष्णा, वन ऑफ द मेन पर्पसेस। इस संस्था में जितने भी सदस्य हैं उनको एक दूसरे के निकट लाना, और एक दूसरे के निकट लाना मतलब सिर्फ भौतिक संबंध हो गया नहीं, एक दूसरे के निकट लाना और इस तरह से भगवान के निकट आना, बस यही एक उद्देश्य है इन संस्था का। तो यहां इसका उल्लेखन है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन छह प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। और कैसा होता है, प्रभुपाद ने इतना जीनियस वे में यह संस्था की स्थापना की है, आप जानो या नहीं जानो, समझो या नहीं समझो, ये एक्चुअली हो रहा है इस संस्था के द्वारा, अगर जैसा प्रभुपाद ने बताया ऐसा पालन करेंगे। और प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं, कहते हैं यह संघ एक व्यक्ति द्वारा चालू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति के आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। इट वॉज स्टार्टेड सिंगल हैंडेडली, एक व्यक्ति 1965 में 40 रुपया लेकर पाश्चात्य देश में गए, उनके पास न पैसा था, $2 मतलब क्या, न्यूयॉर्क के कोल्हापुर के एक यहां से वो एरिया में जाने को नहीं होगा, एक सलाड एक चाय का कॉफी भी ये नहीं मिलता उसमें, एक सलाड का टुकड़ा, चाय तो नहीं पीते, एक सलाड का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में 1965 में 40 रुपए में। प्रभुपाद जी गए और एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की, कैसे, उनके पास कुछ नहीं था, बट शुरुआत में देने लगे, क्या देने लगे, ये ज्ञान देने लगे, एवरी फ्राइडे एवरी वेंसडे एवरी कुछ, तो 3 दिन में इस छोटा सा किसी ने जगह दिया, बोले इस जगह में मैं बोलना शुरू करूंगा, देना शुरू करूंगा, फ्री में देना शुरू किया, पहले देना शुरू किया, फिर लोग आए उनको अच्छा लगा, अरे बाप रे ऐसा गूढ़ ज्ञान, ऐसा रहस्यमय ज्ञान, ऐसा मूल्यवान ज्ञान मुफ्त में ये व्यक्ति सबको बांट रहा है, उनको अच्छा लगा, वो अच्छा लगा तो हाउ टू अप्रिशिएट, कुछ अच्छा चीज मिला है आपको तो मैं उसका आदान प्रदान करना चाहते हैं पर उनको मालूम नहीं कैसा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भगवान के सामने आते हो तो कुछ फल वल ला के रखो भगवान के। उनको मालूम ही नहीं, तो उनको सिखाना पड़ा कि ऐसा ऐसा किया जाता है, वैदिक संस्कृति कुछ नहीं मालूम। फिर वो लोग आने लगे, फिर देखे कि बेचारा बूढ़ा आदमी है और वो खुद एक एप्पल ला के 25 टुकड़ा करके सबको बांटता है, तो अगले बार वो खुद 4-5 एप्पल ला के रखे, इन्होंने काटा उन्हीं को बांट दिया, उन्होंने लाया प्रेम पूर्वक उन्होंने बांट दिया, अच्छा लगा, थोड़ा ऐसा निकट संबंध हो गया। फिर देखे कि बाप रे इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, इसके हम क्या वापस दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, पर एटलीस्ट वो प्रेम दिखा सकते, कुछ तो एक छोटा सा उपहार दिया, प्रेम और बढ़ गया। फिर इस तरह से और लोग आने लगे, पूरी दुनिया एक्चुअली प्रेम की भूखी है, क्योंकि इस प्रेम का रिश्ता हर एक व्यक्ति, जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं कृष्णा बुक में, एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव, सच्चा प्रेम की ढूंढ में, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम, अनंत और असीमित और सेल्फलेस, सेल्फलेस बोलते हैं निस्वार्थ। वो प्रेम जहां मिलेगा व्यक्ति एकदम न्योछावर हो जाएगा पूरा, वो अनंत प्रेम, असीमित प्रेम, अनलिमिटेड इटर्नल सेल्फलेस लव, उसके पीछे पागल है हर एक आत्मा, और वो हम नहीं दे सकते, सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं, और हम उनके प्रतिनिधि बनकर हमारे कोशिश, हमारे यथाशक्ति अनुसार हम लोग उसको बांट सकते हैं लोगों को। पर एक व्यक्ति जब अनुभव करेगा तो उसको मालूम है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक मूक व्यक्ति को एक चख लग गया तो वो बोल नहीं सकता, पर उसको मालूम है क्या है आस्वाद, उसने आस्वादन किया है, ये सच्चा प्रेम है, इधर निस्वार्थ है और कोई एंड नहीं, जितना आप दे सकते हो उतना मिल जाएगा आपको, ये यथानाम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि, वो अनुभव कर सकता है, बुद्धिमान आदमी जितना चाहे ले सकते, भंडार है ये, आप जितना लूट सकते लूटो, आपके ऊपर निर्भर। तो इस तरह से अकेले शुरू किए प्रभुपाद, पर देखिए और क्या किया, उनके पास पैसा था कुछ नहीं, प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर में दे रहे थे मायापुर में, सो आई वेंट टू अमेरिका, आई जस्ट चैंटेड हरे कृष्णा एंड ऑल दिस पीपल के आई हैव नॉट पेड देम एनी अमाउंट, ये फॉरेनर लोग मेरे नौकर क्यों बन गए। प्रभुपाद एक बार हरिशौरी प्रभु ब्रिटिश है, वो बोले ब्रिटिशर के टाइम में ब्रिटिशर लोग हिंदुओं को क्या बोलते हैं नौकर बना के रखते थे पैसा दे, अब देखो मैं तो बुढ़ा आदमी हूं, ये अंग्रेज मेरी काम कर रहा है, वो चामर कर रहे हैं, क्या तुमको पैसा दिया हूं क्या मैंने, बोलो सबको बोलो दिया हूं क्या, नहीं दिया, फिर भी ये देखो मेरा सेवा करो। अब कोर्स प्रभुपाद की नम्रता थी, पर वो बोल रहे थे दोनों का प्रेम का आदान प्रदान है, एक दूसरे के लिए जान दिया है पूरा उनको कृष्ण भावना में लाने के लिए, और उसके लिए वो दूसरा जान देने के लिए तैयार है प्रभुपाद के लिए, इतना प्रेम। और प्रभुपाद ने शुरू किया एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति से प्रेम का आदान प्रदान करते 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 उसको अच्छा लगा तो वो दूसरों को बांटा, वो दूसरों को बांटा, वो दूसरों को बांटा, करते 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 एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में, न पैसा था न कोई इन्फ्लुएंस था न कुछ, एक ही चीज था प्रेम था बस, षड्विधम प्रीति लक्षण, उस प्रेम को कैसा प्रकट करे, प्रकट प्रेम सिर्फ बोला नहीं जा सकता, ये 6 प्रकार का आदान प्रदान एक्चुअली दिखलाता है, अगर नहीं भी है तो एक्चुअली धीरे धीरे आ सकता है, ये 6 आदान प्रदान करने से धीरे धीरे प्रेम आएगा। पुराने जमाने में जब छोटी उम्र में बच्चों का शादी हो जाता था तो लड़की को लड़के के पास ले जाते थे, वो लड़की 8 साल की है, 6 साल की है, और लड़का 10 साल का 12 साल का, दोनों बच्चे उनको कुछ नहीं मालूम, पर उस समय तो क्या करते थे माँ, लड़की की माँ बाप बच्चे लड़की के हाथ में एक छोटा सा लड्डू देते, वो ले जाओ उसको दो उस लड़के को, वो लड़के को जाके देगी, तो लड़के को अच्छा लगता है ये लड़की ने मेरे को लड्डू दिया, ठीक है वो कुछ देगा। तो इस तरह से उसको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति की हमको सेवा करना है, थोड़ा एक प्रेम आ जाता है, और बाद में जब बड़े हो जाते फिर शादी करते थे। तो आदान प्रदान के द्वारा एक्चुअली प्रेम प्रेम जागृत होता है, अभी प्रेम नहीं है तो कम से कम ये 6 आदान प्रदान करके बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अकेला व्यक्ति से, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, ददाती। वो लोग यथाशक्ति, अच्छा चीज चल रहा है तो कुछ दान देते हैं, कोई शक्ति का, कोई बुद्धि का, कोई पैसे का, तन मन धन जो भी, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय के संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो ददाति प्रतिगृहणाति, तो संस्था क्या दे रही है उनको? ये ज्ञान, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान, पुस्तकों के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, तो ये दे रहे हैं। और वापस में लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा ज्ञान है, मैं तो भटक रहा था दुनिया में, कहां कहां घूम रहा था, सही मार्ग पर आपने लाया, थैंक यू वेरी मच। सो कुछ तो प्रेम दिखाने के लिए चलो मैं कुछ देने की कोशिश करता हूं। ददाति प्रतिगृहणाति, और फिर कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहते हैं, भूंगते उनको बुलाते हैं और संडे फिश, चलो फिश में आप अभी प्रसाद लीजिए। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी वे बुलाने पर आते हैं और हमें उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वह ग्रहण करते हैं, भोजयते, उनको अच्छा लगता है क्योंकि प्रेम से दिया हो गया, एक्चुअली क्वालिटी से ज्यादा, क्वांटिटी से ज्यादा, क्वालिटी कितना प्रेम से हमने उनको प्रसाद खिलाया, अच्छा लगता है, अरे प्रसाद दिया उनको, प्रेम से बातचीत किया। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति के संपन्न करने की विषयों के विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, दोनों प्रसाद लेके बैठे रहते हैं, तो बोलते ऐसा कैसा होता है, मेरा मन बहुत आजकल विचलित होता है, क्या करते हो उसकी। कल एक व्यक्ति से, हमारे भक्त से, माता जी मिली और बोल रही थी, प्रोफेसर है वो बोल रही थी कि बहुत स्ट्रेस हो गया मुझे, क्या करते आप, उनको मालूम है कि ये संस्था में आध्यात्मिक कुछ चीज दिया जा रहा है, तो पूछ रही थी कैसा, मेरे को बहुत टेंशन हो गया, टेंशन के कारण मैं स्ट्रेस होकर बेहोश होकर गिर गई कॉलेज में, तो आप इसका कुछ सजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसा किया सकता है, उनको लगा, तो उन्होंने हृदय खोल के पूछा। तो इस तरह से कभी कभी संडे फीस्ट के दौरान हम लोग आते हैं, प्रसाद लेते रहते, तो पूछते क्या होता है, आप लोग क्यों नाचते हैं, क्या करते हैं, कुछ तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो पूछते हैं। और तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों के बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की प्रशंसा करने लगा है। और अब एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट सुनिए, कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य छह प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। द लाइफ ऑफ दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट आर द सिक्स लविंग एक्सचेंजेस अमंगस्ट द डिवोटीज। फिर से मैं दोहराता हूं, कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन मतलब एक शरीर है। अगर आप कहेंगे कि कृष्ण भावनामृत संघ एक शरीर है, इस्कॉन एक शरीर है, शरीर का आत्मा होना चाहिए ना, आत्मा के बिना ये शरीर मुर्दा है। तो जीवन है, आत्मा है तो वो जिंदा है, नहीं तो वो शरीर मुर्दा है। तो ये आत्मा क्या है, इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक शरीर है, तो इसका आत्मा क्या है? कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन यानी अगर ये नहीं है तो ये संस्था मुर्दा है, मर जाएगा ये। कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य छह प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। ये अगर जीवित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, विकसित हो रहा है, तब तक होगा जब सदस्यों के बीच ये छह प्रकार का आदान प्रदान रहेगा। जिस दिन ये छह प्रकार के आदान प्रदान धीरे धीरे कम होते जाएंगे, घट जाएगा, ये एक आध्यात्मिक संस्था नहीं बनेगा, ये लायंस क्लब, रोटरी क्लब जैसा एक छोटा ऐसा रहेगा, तो आएंगे तो अपना काम करेंगे। ऑफकोर्स मेरे को, हमको लायंस रोटरी क्लब से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी अच्छा चले ठीक है, हमारा कहने का मतलब है भौतिक संघ बन जाएगा, और भौतिक संघ मतलब मेरा इंद्रित्व यहां होता है, ठीक है बस सब लोग मेरा गुणगान करते हैं, कंप्लीट ऑपोजिट। यहां हम दूसरों का गुणगान करने आते, भगवान का गुणगान करने आते, अपने को तृणादपि सुनिश्चित मानते, पर वहां सब अपना अपना को दिखलाने आते, कौन कितना महान है, कितना उसका ये है, कितना उसका चलता है, कंप्लीट ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा, कंप्लीट रिवर्स। आध्यात्मिक संस्था मतलब यही उल्टा। तो ये जीवन है, ये छह प्रकार, और ये छह प्रकार का संघ, छह प्रकार का आदान प्रदान अगर रुक गया तो धीरे धीरे ये शरीर जो है मर जाएगा। ये संडे फीस्ट इज द लाइफ, क्यों लाइफ है, बिकॉज दैट इज द टाइम सिक्स लविंग एक्सचेंज। संडे फीस्ट मतलब ये लव, छह प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, एक्चुअली हर रोज होना चाहिए एक मंदिर में, पर कम से कम संडे फीस्ट जो है ये एक जीवन का अंग है, पल्स पल्स। जब पल्स बंद हो गया इसका मतलब हरे कृष्ण। तो ये संडे फीस्ट जो है ये प्रोग्राम एक्चुअली छह चीज होता है, लोग आते हैं, कोई कहता है, कोई लोग सुनते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं, साथ में बैठ के हृदय से बातचीत होता है, प्रेम में आदान प्रदान होता है, उसके बाद कोई उपहार देता है, उपहार लेता है, हरे कृष्ण चले जाते, बस हो गया फिनिश। पर एक्चुअली क्या हुआ, एक जान में जान मिला। अभी 7 दिन तक एक गाड़ी चलेगा अपना, और इस तरह से ये होता रहा रेगुलरली तो ये पल्लवित हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है इस्कॉन का जीवन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का जीवन। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। और ये आदान प्रदान का केंद्र एक ही है, कैसा हम सब कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें, इसी जीवन के अंत में वापस भगवत धाम जाए, बस इसके अलावा और कुछ है आदान प्रदान का, और कुछ उद्देश्य नहीं। अगर और कुछ उद्देश्य होगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नहीं, बिजनेस संघ हो जाएगा, और कुछ संघ का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहां हम आ रहे हैं एक दूसरे का बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए नहीं, एक दूसरे का दूसरा कर, यानी दूसरे कई प्रकार के रिश्ते साफ नहीं करने के लिए नहीं। जिस हद तक वो केंद्र हो जाएगा, धीरे धीरे लोगों में श्रद्धा टूट जाएगी। कोशिश हमको करना चाहिए कि यहां आने का एकमात्र उद्देश्य है अपने हृदय को कैसा शुद्ध करें और कृष्ण को कैसा गुणगान करें। वो शुद्धता अगर मेंटेन होगी यहां, कि ये 6 आदान प्रदान जो हो रहे हैं इसका एकमात्र उद्देश्य है हम एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित कर सके और उत्तेजित कर सके कृष्ण के पास जाने में और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में, बस और कुछ हमारा उद्देश्य नहीं। उस हद तक ये संस्था जो शरीर है वो दष्ट पुष्ट रहेगा, और क्योंकि वो आत्मा एकदम पल्लवित हो रहा है। और जब कुछ दूसरा उद्देश्य हो गया और जब कुछ ये अगर बंद हो गया तो फिर समय की बात है, बस सब खत्म हो जाएगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। एक्चुअली कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, पर एक अनुकूल वातावरण चाहिए। एक्चुअली आप देखेंगे कोई भी सिंसियर आदमी अगर ऐसे संघ में आएगा जहां भक्त लोग एकत्रित हो रहे हैं, प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, प्रेम से एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, एक दूसरे के अच्छे गुण देकर उनका गुणगान कर रहे हैं, और एक दूसरे की गलतियों को, ठीक है सबके अंदर कोई शुद्ध भक्त यहां नहीं उतर के ऊपर से नहीं आया, ठीक है समझ के एक दूसरे को सहन करके, तरोरी व सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदाहरी, अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि हरेक जीव के हृदय में कृष्ण भावनामृत सुप्त अवस्था में है, सिर्फ ऐसे वातावरण में आने से स्वाभाविक रूप से उसकी कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, और उसको लगता है इसमें कुछ तो अच्छा है यहां, भले उसको फिलॉसफी कुछ नहीं समझे, सिर्फ वो ऐसे वातावरण में आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति इससे मेरे को क्या मिलेगा यही देख रहा है, और यहां मैं अपना कैसा गुणगान करूं, सबको अपना महत्व क्या है बताऊं। पूरी दुनिया में जो भी संघ है उसमें यही चलता है, पर ये इसे पीपल डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इधर हजम नहीं कर पाते, बोले ऐसा कैसा, इतना इतना बड़े बड़े व्यक्ति लोग चुपचाप कोने में आके बैठा हुआ, जब पूछे तो समझता आता है उसका इतना बड़ा बिजनेस है, पर वो ढोल बजा के नहीं बोल रहा है, बाई चांस पता लगता है बातचीत करने पर, नहीं होता है, हाँ, होता है। प्रभु जी, हमारे एक भक्त है चंडीगढ़ में, डिविजनल इंजीनियर है, क्या वो डिविजनल मैनेजर, उनके नीचे 160 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर रिपोर्ट करते हैं उनको, 6 डिविजनल हेड्स रिपोर्ट करते हैं। और वो आदमी को आप देखोगे आके प्रवचन में ऐसा बैठता है मानो ये बेचारा कहीं से इधर भी है, कुछ पता नहीं लगता है, जब तक वो मुंह नहीं खोले तब समझ में आता है कि ऐसा आदमी है ये। पर इतना सिंपल, हर एक व्यक्ति अपना यहां गुणगान करने नहीं आ रहा है, यहां से कुछ प्राप्त करने आ रहा है और प्रेम से प्रोत्साहित होने के लिए आ रहा है। जिस हद तक इस वातावरण को मेंटेन करेंगे, स्वाभाविक रूप से प्रचार करने की जरूरत नहीं है, बाई चांस भी कोई अंदर आ जाए तो स्वाभाविक रूप से उसको लगेगा कि ये मुझे यहां आना, रेगुलरली आना है और मुझे इसको स्वीकार करना है, क्योंकि कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, साध्य को बुना, ये सब है एक सबके हृदय में, सिर्फ एक अनुकूल वातावरण चाहिए। अनुकूल वातावरण में आया तो अपने आप स्फुरित हो जाएगा। और अनुकूल वातावरण क्या है, जहां श्रवणम कीर्तनम केंद्र है। आप ये जो एरिया है वहां कचरा डालने लगी, कचरा फेंकते रहिए, कचरा फेंकते रहिए, सारे कौवे आके बैठेंगे। आप इसको साफ कर दीजिए और अच्छे अच्छे फूल डालिए, यहां तितली आएंगे, भ्रमर आएगा, अलग पर। तो जैसा वातावरण करेंगे वैसे लोग आएंगे इधर। आप एक बार बनाओ इधर तो दारू पीने वाले लोग आएंगे, आप एक मंदिर बनाओ तो सात्विक लोग आएंगे। अब जैसा वातावरण बनाएंगे वैसे लोग आकर्षित होंगे। और वातावरण बनाना वैकुंठ वातावरण, प्रभुपाद ने कहा मेरा मंदिर मतलब वैकुंठ, मंदिर मतलब वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या, वैकुंठ में एक ही काम होता है, सब लोग कृष्ण को केंद्र रख रहे हैं और सब लोग अपने आप को बहुत तुच्छ समझकर एक दूसरे की सेवा कर, एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं, अपने आप को पीछे रख रहे हैं। भृंगाधिपे हरिकथा इव गाय माने, आप लोग पढ़िए वैकुंठ का वर्णन, आप पढ़िए तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय, भागवतम के तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय आप पढ़िए, जब चतुष्कुमार वैकुंठ में जाते हैं जय विजय से मिलने के लिए, जय वैकुंठ को उस समय जय विजय से मुलाकात होती है, उस समय उस अध्याय में डिस्क्रिप्शन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, भगवत धाम का वर्णन, इस अध्याय का नाम है तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय, 15वां अध्याय का नाम, आप पढ़िए उसको, उसमें वर्णन है। हर एक व्यक्ति दूसरों को सामने रखता है, अपने आप को पीछे रख रहा है। हर एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति को पीछे रख रहा है और कृष्ण के गुणगान को सामने रख रहा है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करता है, हर एक व्यक्ति को चाहता है कि तुम्हारा गुणगान, अच्छे अच्छे तोते हैं, अच्छे अच्छे कोयल हैं, पर जब भ्रमर भ्रंग आती है घूम करके भगवान के पास जाती है तो अच्छे अच्छे कोयल भी चुप हो जाते हैं, बोले नहीं इसको गाने दो, ये हरिकथा कर रहा है, ये गुणगान कर रहा है। कोयल कहता है कि ये क्या गा रहा है, ये भर्र कर रहा है कुछ आवाज, मैं कितना कोयल जैसा गा सकता हूं, ऐसा नहीं समझता। अरे कोयल भी समझता है, नहीं नहीं ये भ्रमर गा रहा है, इसको गाने दो। तो इस तरह से भगवत धाम का वर्णन है, जिस हद तक ऐसे एक वातावरण का निर्माण करेंगे उस हद तक स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक सिंसियर लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि देखेंगे हाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, ये भौतिक संसार का जगह है ही नहीं लगता ये एरिया, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, भौतिक संसार का नियम ही अलग है। तो ये 6 आदान प्रदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतएव हर व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और उसकी आदि कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। स्वाभाविक रूप से आपको कुछ मत करो, आप सिर्फ श्रवण और कीर्तन को केंद्र रखो, इस जगह का केंद्र एक ही होना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु बस, और उसके लिए सारा बड़ा प्रोग्राम जो भी है उसका केंद्र यही है, कैसा श्रवण बढ़े, कैसा कीर्तन बढ़े, प्रेम पूर्वक लोग आए, फिर देखो सब कुछ भगवान ऑटोमेटिकली करेंगे, कोई तकलीफ नहीं, 100%। प्रभुपाद का उदाहरण है, 40 रुपए से शुरू की, सिर्फ उन्होंने श्रवण कीर्तन को केंद्र रखा और प्रेम से निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगे लोगों की, लोगों को अच्छा लगा, बढ़ते 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 अंतरराष्ट्रीय कृष्ण 10 साल के अंदर। जहां कृष्ण देखते हैं ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से किसी को स्फूर्ति मिलेगा और सब हो जाएगा, दूसरे वो सब अपने आप आ जाएगा। जहां कृष्ण है वहां साक्षात लक्ष्मी आ जाएगी अपने आप। कोल्हापुर में क्या कहना, कोल्हापुर में तो साक्षात महालक्ष्मी जी का निवास है, तो नारायण का जहां गुणगान होगा तो वहां लक्ष्मी आएगी अपने आप, चिंता मत कीजिए। भगवान नाम का जप करना या उसका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का भव्य उदाहरण है। तो योगदान, हम लोग दान दे रहे हैं, ददाति, क्या दे रहे हैं, भगवान नाम का जप करना और उसका प्रचार करना योगदान अथवा दान का भव्य उदाहरण है, ददाति सिद्धांत। इसी नियम से प्रतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और उस भौतिक जगत की परिस्थिति को समझने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए आने वालों को, ओपन माइंडेड, सुनो ये संसार क्या है, तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है, वो पूछेंगे हम बोलेंगे, हम पूछेंगे वो बोलेंगे, इस तरह से सब समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं के प्रीति भोज का आयोजन करते हैं तो वे संघ के सारे सदस्यों तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन के लिए बुलाते हैं। इसमें रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद प्राप्त करने आते हैं और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर बढ़िया प्रसाद प्रदान करते हैं। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इनका पोटोवा उनका विठोवा दोनों तरह से लाभान्वित, आदान प्रदान भी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने कहा है इससे पहले कि मैं दूसरी बात कहूं, अच्छा और एक चीज है कि ये 6 प्रकार के आदान प्रदान प्रीति लक्षण भक्तों के अलावा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो जब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग मत करो, ऐसा लोगों का संग मत करो, इसका मतलब नहीं है उनको देखो ही मत और आंख बंद करके घोड़े जैसा इस तरफ ये लगा के चले जाओ, नहीं जरूरत नहीं है। भौतिक संसार में बाहर जाना है, काम करना है, कुछ खरीदना है, जाना है मार्केट में, तो संग हो ही जाता है, भले तुम सन्यासी हो या दुनिया में रहना है तो दुनिया के लोगों के साथ हमारा संग होगा ही। पर संग मत करो का मतलब है ये 6 प्रकार का आदान प्रदान। अच्छा, कर्तव्य के रूप में किसी को खाना खिला सकते हैं हम लोग, कोई भिखारी है उसको कुछ खिला रहे हैं कृपा पूर्वक किसी को खिला सकते हैं, कर्तव्य के रूप में अतिथि कोई घर आया है, एक समाज में है, समाज का कोई घर आया है तो उसको खिलाते हैं, कर्तव्य के रूप में खिला सकते हैं पर प्रीति पूर्वक नहीं, अगर वो कृष्ण भावनाओं के लिए अनुकूल नहीं है, प्रीति पूर्वक नहीं। ठीक है, पूछताछ करते हैं कैसा है आपका घर में, ठीक ठाक सब चल रहा है, हृदय खोल के आपको क्या लगता है मुझे 16 माला करना है कि नहीं, क्यों? क्योंकि हृदय की बात जब एक दूसरे से करते, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे यहां एक भक्त था, अनपढ़ था वो, ऐसे इतनी थर्ड क्लास मतलब तीसरी कक्षा पास किया है, ऐसे ही आ गया वो भक्त बन गया, ब्रह्मचारी बन गया आश्रम में, संघ का मैं असर बता रहा हूं, हमेशा वो नौकरों के साथ बैठ के, जो नौकर लोग अकल बगल के घर के जो नौकर लोग हैं वो लोग रात को बैठते हैं, दिन भर काम करके सोते रहते हैं और रात को वो लोग बैठ के गप्पा मारते रहते, ये जाके उनके साथ हमेशा बैठता था। तो मैं उसको कहता था कि तू ये काम कर, ऐसा मत बैठा कर, तू भक्तों के साथ बैठ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रात रात भर बैठ के कुछ भी बातचीत। तो एक दिन वो मंदिर छोड़ के चला गया, फिर कोई ड्राइवर का काम कर रहा था किसी के घर में, कोई सेठ के घर में, उसके बाद शादी हो गई, बहुत समस्या से गुजर रहा था, धीरे धीरे कंठी माला उतर गया, क्या करूं समस्या बाहर की दुनिया में। फिर एक दिन वो आया और उसने बोला, कैसा मैं वैसे बातचीत करते करते उसको थोड़ा प्रसाद साथ खिलाया, प्रेम से बातचीत करा, तो उसने बोला कि क्यों मैं यहां से निकल गया। एक नौकर से बात कर रहा था और नौकर के साथ बातचीत करते करते उसने अपना हृदय खोला कि पता नहीं क्या ऐसा 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 है, कुछ तो ऐसा बताया मेरा जीवन का ऐसा है, क्या योजना है। उसने भी पूछा तेरा क्या योजना है, जीवन का योजना क्या है। बोला ऐसा ऐसा है, भगवान की भक्ति कर रहा हूं बस। तो देखिए उसका कोई जो जो नौकर था ना उसके साथ बात कर रहा था, उसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं था, उसने अपने हृदय की बात बताया। बोले अरे तू तो नौजवान है, अभी 20-25 साल का है, ठीक है, अभी तो दष्ट पुष्ट है, अभी सेवा कर रहा है, फ्री में कर रहा है, तेरे को यहां पगार वगार नहीं देते, कल तू बूढ़ा हो जाएगा तो कौन तेरा देखभाल करेगा। ये लोग बोलेंगे ए, तू बूढ़ा हो गया चल अभी इधर से। उसको क्या मालूम अपने हृदय की बात कह रहा है वो भी उसका शुभ चिंतक है, अपने हृदय की बात उसने बताया। पर उसको श्रद्धा नाम का चीज नहीं है, उसको भगवान की भक्ति क्या है नहीं मालूम, भगवान सबके माता पिता है वही सबको खिला रहे वो सब नहीं मालूम, हाथी को भी खिला रहे 200 पाउंड तो हमको भी खिलाएंगे उतना नहीं मालूम। उसने अपने हृदय की बात बोली। बोले इसीलिए काम कर तुरंत, अभी तू मोटा तगड़ा है ना, अभी तू जा काम कर, काम करके पैसा कमा, इसमें रख थोड़ा बैंक में, ठीक है, मंदिर आया कर, संडे को एक बार आया कर, खूब खा के जाना। और क्योंकि उसने भी हृदय खोला और उसने भी हृदय खोला, अगले दिन सुबह मंगल आरती से पहले अपना सब पैकिंग किया निकल गया, किसी को बोला तक नहीं उसने, पूछा भी तक नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जब प्रीति लक्षणम हृदय खोलते हैं हम लोग, कोई अजीब कोई अजनबी आता है तो हम लोग दरवाजा खोल के क्या अंदर बुलाते, किचन में बैठाते क्या उसको, अजनबी मान लो कितना बात, हाँ ठीक है ओके बंद। इसी तरह से हृदय का दरवाजा भी, हाँ ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप स्थिति सारे ठीक है बहुत अच्छा, हरे कृष्ण बंद। पर हृदय के अंदर, घर के अंदर, घर भी एक हृदय, हृदय भी एक घर के समान, उसको अंदर इन्वाइट करना है तो हमको मालूम होना चाहिए क्या हम उस पर ट्रस्ट, कैन वी ट्रस्ट, कैन वी उसके विश्वास कर सकते हैं क्या। और अगर भक्ति में प्रगति करना है तो किस प्रकार का, 6 प्रकार का ये संग प्रीति लक्षणम किसके साथ करना है ये सोच समझ के करना है। तो हम कहते हैं कि जनसंग से संगति आघात, ऐसे लोगों का संग, ये 6 प्रकार का संग नहीं होना चाहिए। और एक चीज प्रभुपाद यहां कहते हैं, निष्कर्ष यह निकला कि हमें सदैव भक्तों की संगति करनी चाहिए, भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों का अनुकरण करना चाहिए तथा गुरु के आदेशों की पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इस तरह हम भक्ति तथा सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में समर्थ हो सकेंगे। और अब सुनिए जो मैं बता रहा था पिछले बार कि हम कनिष्ठ रहेंगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। और हम महाभागवत तो नहीं है, उत्तम अधिकारी तो नहीं है, कम से कम मध्यम के स्तर पर आना चाहिए। और मध्यम स्तर का क्या है मतलब, ऐसा भक्त जो न तो नवदीक्षित है, नवदीक्षित मतलब क्या बोलते हैं कनिष्ठ है, न महाभागवत, अपितु भक्ति में, भक्ति की मध्यकालीन अवस्था में है, यानी हम सब, उससे आशा की जाती है कि वह भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों को मित्र बनाएगा, अज्ञानियों पर दया करेगा और ईर्ष्यालु तथा आसुरी स्वभाव वालों का परित्याग करेगा। और अब कहते प्रभुपाद इस श्लोक में, चौथे श्लोक में, भगवान से प्रेममय आदान प्रदान करने तथा भक्तों से मैत्री स्थापित करने की संक्षिप्त विधि का उल्लेख है। भगवान के साथ संबंध करने के लिए भी ये 6 आदान प्रदान है, ददाति, ऑफकोर्स भगवान को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, सहस्र लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, लक्ष्मी जी हर रोज उनको खिलाते तो आपके कोई घी की जरूरत नहीं है डालडा की। पर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान के सामने आते हैं एक पत्ता एक फल और फूल या जल कुछ लाके रखते हैं अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारी प्रीति बढ़ती है भगवान के प्रति, उपहार दे रहे हैं हम लोग भगवान के प्रति। प्रेम का। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपकी कृपा से सब चल रहा है, मैं क्या आपको दे सकता हूं, पर फिर भी एक प्रेम का स्वरूप है, एक फूल चढ़ा रहा हूं आपके लिए, एक छोटा माला, एक छोटा फल। ददाति प्रतिगृहणाति, भगवान उस बड़े प्रसन्न होकर आपके हृदय में आनंद भर देते। प्रतिगृहणाति, आपको आनंद मिलता है। गुह्यम आख्याति, कम से कम भगवान के सामने तो हृदय खोलो, दूसरे के साथ हृदय खोला तो पूरा दुनिया को बता देगा तो तकलीफ हो जाएगा। हम लोग हिचकिचाते किसी को बोलने के लिए, आज इसको बोला तो कल पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा और पता भी नहीं वो सही में मेरे को ठीक से सलाह देगा या नहीं, हमको विश्वास नहीं। पर एटलीस्ट भगवान के सामने तो हृदय खोल सकते हैं, वो किसी को नहीं बोलने वाले, भले सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो किसी को नहीं बोलने वाले और वो हमारे समस्या का हल कर सकते हैं। पहले कम से कम भगवान, उसके बाद गुरु, उसके बाद वरिष्ठ वैष्णव, बाद में शायद दूसरों, पर कम से कम एक कहीं से तो शुरू करो। गुह्यम आख्याति पृच्छति, और भगवान बुद्धि देंगे, तीव्रता से प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि देंगे। भूंगते भोजते, आके प्रसाद खाओ, कुछ अर्पण करो और वो चरणामृत देंगे, थोड़ा प्रसाद देंगे, खाके जाओ। षडविधम प्रीति लक्षणम, भगवान के साथ प्रेम हो गया, थोड़ा रिश्ता बढ़ गया, और भक्तों के साथ प्रेम करने का रिश्ता, ये चीज बताया गया। हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं दानवीर महाराज, उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है और उसमें ये छह रिश्तों के ऊपर और थोड़ा प्रकाशित प्रकाश डाला है, तो मैंने सोचा उसके आधार पर और इधर जो मैंने सुना है भक्तों के मुख से, ये छह प्रकार के जो आदान प्रदान है ये सबके लिए काम करता है, सब स्थिति में काम करता है। अगर आप रिश्ता स्थापना करना चाहते हो तो हमें कुछ उपहार देना जरूरी है शुरुआत में। ये एक दोस्ती का एक जेस्चर, जेस्चर क्या बोलते हैं, एक लक्षण है, दोस्ती का एक टोकन, जेस्चर प्रतीक है, हाँ, कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, एक इस तरह से रिलेशन संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो कुछ हम देते हैं। तो जब कुछ ऐसा देते हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा एक संबंध स्थापित होता है प्रेम का, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट, हम यहां आ रहे हैं पॉजिटिव, मतलब कृष्ण को केंद्र रख के भगवान की भक्ति में प्रगति करने की, और इसीलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ के इसका उपयोग करना चाहिए। और इसका मतलब भी क्या है कि आई एक्चुअली केयर अबाउट दैट पर्सन, किसी को हम उपहार दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हमारा बहुत ही केयर, कालजी, हाँ, उसके कालजी, इसीलिए तो हम लोग उसको कुछ उसके साथ हमारा रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं इत्यादि, तो एक्चुअली वो सूचित करता है वो। और सचमुच में अगर आप उस व्यक्ति के प्रति परवाह नहीं है तो उस संबंध के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति परवाह नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे, पर परवाह है और वो संबंध स्थापित करने की इच्छा है तो हम देंगे। और एक्चुअली वो उपहार जब किसी को देते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उपहार से ज्यादा उसके पीछे उस व्यक्ति ने कितना समय निकाला होगा सोचने के लिए कि उस व्यक्ति को मैं क्या दूं, कम से कम उतना तो समय, उतना शक्ति तो निकाला है सोचने के लिए इसको क्या दूं, क्या अच्छा लगेगा। दूसरा समय निकालना और उस वस्तु को लाना, खरीद के लाना या उसको बनाना, कुछ तो उतना समय गया है, और फिर देने तक उसको संरक्षित रखना वो जरूरी है। हमारे एक भक्त अमेरिका से आए, वो कुछ प्रसाद लाए, वो सोच के लाए ये प्रसाद वहां तक जाने तक रहना चाहिए, तो उसको एक ऐसा डब्बा में डाल के रखा कि खराब नहीं हो, उसको प्रोटेक्ट किया, एक्स्ट्रा वेट है बेचारा, वो प्लेन में तो एक एक किलो का उसको दूसरा उठा के फेंक देते, उसको सोच समझ के उसने पैकिंग किया, ऐसा थर्मोकोल भी किया कि वो सुरक्षित रहेगा, वेट ज्यादा नहीं होगा,
इतना तकलीफ हजारों हजारों किलोमीटर से कुछ लाना, भले वो इतना छोटा सा प्रसाद हो, पर उस सोचा कम से कम उसने मेरे बारे में, सोच के उसने उसको तैयार किया, उसको खरीदा, उसको अच्छी तरह से पैकिंग किया, उसको संरक्षित तरीके से यहां तक लाया। प्लेन में भूल सकता था वो नहीं, उसको याद करके लाया। और अब उस व्यक्ति को दे रहा है। तो एक्चुअली उपहार से दारा, उपहार से ज्यादा उस व्यक्ति की भावना उसके पीछे जो है वो स्वीकार, भावग्राही। कृष्णा भी वही स्वीकार करते हैं। सुदामा ने भगवान को वो पोहे लाए। गौर गोविंद महाराज बता रहे थे एक बार, एक उनकी कथा में बोल रहे थे गौर गोविंद महाराज, सुदामा वो गरीब ब्राह्मण भिखारी, कुछ नहीं था उसके पास, अगल बगल घर से वो बचा खुचा जो टुकड़े टुकड़े वाले, और वो भी बेचारा चलते चलते आया, और वो भी एक पोटली बनाकर ये बाजू में रखा था, बाजू में पसीना छूटता है, वो बेचारा ऐसा रखा हुआ था, पूरा पसीना से दुर्गंध भी आ रहा था, पर कृष्ण को कुछ देने के लिए लाया था, और इतने दूर से उसको लाया था। कृष्ण ने वो नहीं देखा, कृष्ण उसको स्वीकार कर दिया, क्योंकि उस उपहार से ज्यादा उसके पीछे की जो भावना थी वो देखी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो तैलंगा गाय खाने के बाद जो बचती थी उसको खाते थे छिप छिप के, महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया और बोला, ऐसा चीज खा रहे हो, किसी को बोले नहीं, मजा ले रहे हो, इतना बड़ा बड़ा फीस्ट खा रहे हो, क्या फीस्ट खा रहे हो, गाय भी थूक देती थी उसको, पर क्या चैतन्य महाप्रभु ने सीखा, उसका वैराग्य देखा। इसी तरह से हर एक चीज के पीछे उसकी भावना, जैसे विदुर के घर गए भगवान, दुर्योधन का 56 भोग न खायो, रुख साख विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो इस तरह से भगवान के अंदर वो दिव्य लक्षण है। भगवान हमको सिर्फ देते ही रहते। अरे प्रकृति भी उनका एक देन है। प्रकृति में कोई चीज चार्ज करते हैं क्या भगवान? हमको यहां लाइट लगाए तो लाइट बिल भरना पड़ता है महीने में एक बार। भगवान सूरज का अभी एक बिल लगाना शुरू करे तो हर महीने सूरज अपना बिल भेजे आपको, सूरज का किरण है तो बंद कर दूंगा, लाइट सप्लाई बंद कर दूंगा मैं। अगर बारिश, इंद्रदेव अपना बिल भेजना शुरू करे आपको, बारिश नहीं भेजेंगे नहीं तो। अगर वायुदेव अपना बिल भेजे नाक नहीं तो नाक में ताला लगा देंगे आपका, तो क्या होगा आपका? आप सोचिए, भगवान हमको मुफ्त में इतना चीज दे रहे हैं, हम इतने कृतज्ञ हैं, थोड़ा भी प्रेम नहीं? रास्कल्स हम लोग उल्टे वापस बोलते कि भगवान है ही नहीं। कितना आसुरिक स्वभाव है हमारा, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ लोग हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नराधमा अधम है, सबसे पशु है, द्विपाद पशु, माया अपहृतज्ञा, बड़े बड़े पीएचडी की है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आसुरम भाव माश्रिता, असुर है कि जिसका खाया उसको भी गाली देते खाने के बाद, है ही नहीं वो मूर्ख। बोलने के लिए शक्ति भी वही दे रहे। कितना कृतघ्न है हमारे हृदय में, एकदम ये आसुरिक भाव स्वभाव है, तो इतना दे रहे भगवान, इतना ये। कहने का मतलब है, देना एक दैवी गुण है, आसुरिक गुण और दैवी गुण। आसुरिक गुण मतलब लेना लेना लेना, और दैवी गुण मतलब देने में आनंद लेना, देने में आनंद लेना। एक्चुअली इट्स ए फैक्ट, जितना हम देंगे ना उतना भगवान हमको देते हैं, और क्योंकि भगवान का स्वरूप है, सिर्फ दे रहे भगवान, क्या चाहिए उनको, फिर भी दे रहे दे रहे दे रहे दे रहे, कभी कुछ अपेक्षा नहीं करते हमसे, सिर्फ कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे तो हमारी हमारा फायदा है। तो देना सीखना चाहिए, और देने में आनंद लेना सीखना चाहिए, और एक्चुअली जब देना शुरू करते ना तो हम समझ लेना है वो देवता आदमी है, और सिर्फ लेने में ही लगा हुआ है, और कृतज्ञ वापस नहीं देता है, इसका मतलब है वो बड़ा आसुरिक प्रवृत्ति है। एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, लेना लेना, इससे क्या मिलेगा मेरे को, इस रिश्ते से क्या मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मिलेगा।
दैवी प्रकृति आदमी लेने से ज्यादा देने की इच्छा रखता है, और लेता है तो कभी नहीं भूलता, और देता है तो तुरंत भूल जाता है। दो चीज, एक महान साधु बोल रहे थे, दो चीज कभी नहीं भूलना और दो चीज तुरंत भूल जाना। दो चीज कभी मत भूलना, दो चीज तुरंत भूल जाना। दूसरों ने तुम्हारे प्रति जो बुरा किया ना, तुरंत भूल जाओ, और तुमने दूसरों के प्रति जो अच्छा किया, तुरंत भूल जाओ। यह सुखी रहने का सीक्रेट है, रहस्य है। दूसरों ने तुम्हारे प्रति जो बुरा किया और तुमने दूसरों के प्रति जो भला किया, तुरंत भूल जाओ। अफकोर्स इतना आसान नहीं है, बोलना बड़ा आसान है। 20 साल पहले तुझे मालूम है मैंने क्या दिया था, और आज तू ऐसे कह रहा है। हाँ, छी। दो चीज कभी मत भूलना, दूसरों ने तुम्हारे कुछ भला किया है और तुमने अगर किसी का कुछ बुरा किया है, सब भूलो मत, याद रखो, फिर से मत करना। बोले ऐसा जो आदमी करता है वो बड़ा सुखी रहेगा जीवन में, अगर नहीं वो बड़ा दुखी रहेगा। अरे मैं कितना दिया, वापस कुछ भी नहीं दिया उसने। और उसने ये किया। तो इस तरीके से ये दैवी गुण का लक्षण है। अपने आप देने से दैवी गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, 16वें अध्याय में पहला 3 श्लोक आप पढ़िए, दैवी गुण बताया गया है उसमें है, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध, सब ये सब लक्षण है, उसमें से दैवी गुण में एक है। पर जब देते वक्त दो चीजों के प्रति बहुत होशियार रहना चाहिए। एक, कभी हमको अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि मैं यहां दे रहा हूं, अगर मैं नहीं दे दूंगा तो ये लोग सब खाएंगे क्या। अहंकार हो जाने का एक सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए बोलते हैं देने के बाद भूल जाओ। और दूसरा, एक मतलब सब लोग जानना चाहिए कि मैं कितना दानी आदमी। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर बायां हाथ दे तो दाहिना हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए दिया, खत्म हो गया ना बात, हो गया बस, हो गया, भूल जाओ बस। और दूसरा, तीसरा, हमारा उद्देश्य जो है इसके बदले में क्या मिलेगा वो नहीं होना चाहिए, तब जो आदमी है दे के खुशी रहेगा वो दैवी गुण है। जब देने वाले को क्या होता है, क्योंकि देना वाला अपना हृदय का एक टुकड़ा किसी को दे रहा है, जिसके लिए हृदय में जगह नहीं है उसके लिए घर में जगह नहीं है, उसके लिए तो उसको देगा क्या आदमी, तो हृदय में जगह उसके लिए बन रहा है। और दूसरा, अपने से वो थोड़ा देना, मतलब थोड़ा त्याग करना, थोड़ा सैक्रिफाइस। और तीसरा, जब दे रहे हैं तो जिसको दे रहे हैं उसके प्रति थोड़ा प्रेम जागृत होता है, हमको अच्छा लगता है। और ये देने का फिलॉसफी कैसा है, देने का उसका तत्व क्या है, तत्व ज्ञान उसके पीछे। हमारा उद्देश्य है एक सुंदर रिश्ता स्थापन करने का देने के बाद, तो जिसको हम दे रहे हैं उस व्यक्ति को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए कुछ दे रहे हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए हमसे। और दूसरा, हमको अच्छा लगता है उस व्यक्ति को खुश करके हमको भी अच्छा लगता है। और तीसरा, दोनों के बीच जो रिश्ता है वो थोड़ा कड़ा हो गया। तो इस तरह से 3 चीज एक साथ हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से जब हम किसी को देते हैं तो उसके प्रति हमारा थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन, अरे दिया है अब थोड़ा स्मूथ हो जाता है, थोड़ा ऑब्लिगेशन, इतना दिया है थोड़ा, हाँ एक्सपेक्टेशन नहीं बट थोड़ा ऑब्लिगेशन, ऋण, एक तरह का ऋण बन जाता है, कितना दिया है, थोड़ा आदान प्रदान करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं पर सार में हम लोगों ने बता दिया है। और एक चीज है, अगर दे रहे तो इसके प्रति कुछ प्रेम है, क्योंकि बिना प्रेम के ये आदान प्रदान होगा ही नहीं। पर एक चीज है, अगर प्रेम होना है तो आदान प्रदान होना चाहिए, दोनों है संबंध है। प्रेम है तो देंगे, और देंगे तो प्रेम होगा, तो जितना प्रेम होगा उतना ज्यादा देंगे, जितना ज्यादा देंगे उतना प्रेम होगा, दोनों संबंधित है, इस तरह से रिलेटेड है। और प्रेम भी है और दे भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छा गुण है। जब देते हैं तो हृदय स्फुरित हो जाता है और प्रेम बढ़ने लगता है। एक छोटी सी देना प्रेम का एक लक्षण है और प्रेम का एक प्रकटीकरण है। और देना शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए एक सुंदर कहानी लिखते हैं। कहते हैं कि एक बार एक आदमी था, साधु था, साधु ऐसे भीख मांगने जाता था मधुकरी के लिए, एक गांव में जाता था। तो एक आदमी कभी कुछ नहीं देता था, भगा देता था, निकल निकल निकल, कभी नहीं दिया। फिर भी बड़ा सहनशीलता के साथ फिर भी एक दिन गया उसके घर। इसको बहुत गुस्सा आया, बोला इतने बार बोलने बाद भी बार बार आता है। अंदर गया और चूल्हा में, चूल्हा के नीचे सब राख था, तो एक बर्तन में पूरा राख लिया और ये ऐसा हाथ फैलाए, शॉल फैलाया था, तो उसने आया और इतना गरम गरम राख जो है करके डाल दिया, चल दे दिया निकल। तो ये जो संत था इसने बोला, बोला बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने आज मुझे दिया। बोले अरे तो मैं तेरे को अपमान करने के लिए दिया, तू तो बड़ा खुश हो रहा है, सही में तू खुश है क्या? बोला हाँ। बोले क्यों? बोले आज तू पहली बार दिया कुछ, आज तक तू देता नहीं था, भले कुछ भी दिया, राख भी दिया, पर दिया तो सही, तो देना शुरू किया ना, ये देखकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। तो देने और लेने में 180 डिग्री का डिफरेंस है। देना मतलब कैसा? ऐसा ये लो, और लेना मतलब ऐसा, तो 180 डिग्री। इसके बारे में हमारे भक्त ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाया। कितने लोग होते हैं, बड़े कंजूस लोग होते हैं, देने की इच्छा नहीं कर। एक बार एक कंजूस सेठ था, इतना कंजूस था तो एक दिन वो नाव में जा रहा था, बहुत लोग थे इसीलिए घुस गया, क्योंकि कम पैसा कम होगा बोल के, पूरा ओवरलोड हो गया था, फिर भी थोड़ा कम पैसे में घुस गया। वो डूब गया नाव, लुढ़क गया और डूबने लगा। तो एक आदमी ने एक नाव के ऊपर चढ़ के सबको बता रहा, सब 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 सब, तो सबको उठाया उसने, बोला हाथ दो, सब हाथ देते थे, खींच लेता था। ये सेठ के पास आया, हाथ दो, डूब रहा है पर हाथ नहीं देता, हाथ तो दो। तो दूसरा बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, बोले नहीं एक मिनट सुनो, मैं इसको उठाता हूं, ये लो हाथ लो, तुरंत हाथ दे दिया उसने। फिर उसको उठा दिया। तो दूसरे आदमी ने पूछा, अरे मैं आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं, तूने दे बोला ना, जिंदगी भर इसने कुछ दिया नहीं, हाथ देगा कैसा हो, सिर्फ लेने की इच्छा, इसीलिए मैंने बोला ले मेरा हाथ ले। जब ले बोला तो ले लिया इसने। तो कुछ लोगों को देने का अभ्यास नहीं है, ले बोला तो हाथ फैल जाता है, तो उतना नहीं होना चाहिए। और एक भक्त ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले दो भाई थे। देखिए अपना ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा काम करता है। दो भाई थे, दोनों ने एक दुकान खोला, बगल बगल नहीं, दोनों जुड़े हुए भाई थे। एक का दुकान ऐसा सक्सेस हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और दूसरे का घटते जा रहा है, बंद करने की स्थिति आ गई।
तो एक व्यक्ति ने बोला, यार तुम लोग इतने ही होशियार हो, दोनों इतने ही मतलब क्या बोलते हैं बुद्धिमान हो, दोनों का बोलना तरीका सब एक ही है, इसका लॉस कैसे हो रहा है इसका, मैं थोड़ा स्टडी करता हूं। तो एक दिन छिपकर दोनों का बिजनेस करने का तरीका इसने देखा और तुरंत समझ गया, बोला अभी तो समझ में आ गया, छोटी सी दोनों भाइयों में अंतर है, इसीलिए करोड़पति बन गया और ये रोड पे आ गया। बोले क्या? बोले जब दुकान में आते हैं लोग तो किसी ने पूछता है, सेठ जी 1 किलो शक्कर देना। तो एक भाई जो बड़ा यशस्वी था, वो क्या करता था, वो 1 किलो का वजन रखता था एक वजन पे, और एक साइड पे जो ये होता है बर्तन होता है उसमें एक मुट्ठी डालता था, और एक मुट्ठी डालना, और एक डालना, और थोड़ा डालना, और थोड़ा डालना, जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाए। और बगल वाला जो क्या करता था, जिसका लॉस हो रहा था, वो क्या करता था, पहले इतना भर देता था और भर के लेते रहता था वहां से जब तक, तो हर बार जब लेता है ना, मालूम है 1 किलो ही है, पर जो कस्टमर उसको लगता था कितना ले रहा है, अरे अरे लेते जा रहा, ये तो लेते जा रहा। दूसरा बड़ा होशियार था, दूसरा डालेगा एक मुट्ठी, फिर मुट्ठी, वाह कितना और डाल रहा है, और डाल रहा है, और डाल, डालना 1 ही किलो है पर और दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, इसीलिए उसका बिजनेस सक्सेस हो। कितने यहां दुकानदार है, सीख लो। तो देना दैवी गुण है, किसको अच्छा नहीं लगता स्वीकार करना, पर लेना, लेने में आनंद लेना। तो इस तरह से अगर प्रेम जागृत करना है भक्तों के, थोड़ा थोड़ा कुछ तो देना सीखो और देने में आनंद लेना सीखो, और स्वाभाविक रूप से इतना आनंद मिलता है कि उसके, और सबसे बड़ा देन क्या है, किसी को कृष्ण देना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राणैर अर्थे धिया वाचा। प्राण दे दो, प्राण नहीं, नहीं प्राण तो किसी ऑलरेडी को दे दिया है, किसी को नहीं, ठीक है अर्थे पैसा दो, पैसा भी नहीं वो तो मिलता ही नहीं मेरे पास, धिया कम से कम बुद्धि से समझो और कृष्ण के बारे में लोगों को बताओ। नहीं मुझे बुद्धि भी नहीं, वो सब समझ में आता ही नहीं, वाचा कम से कम लोगों को बोलो यार हरे कृष्ण, अब तुमको कृष्ण को जानना है तो जाओ इधर सुनो। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से कृष्ण को अगर किसी को हम देते हैं तो जो आनंद हमको मिलता है उस आनंद की तुलना में पूरी दुनिया का जो आनंद है वो तुच्छ है, कुछ नहीं। और जिसने इसका अनुभव किया है वो बड़ा बुद्धिमान जीव है और बड़ा भाग्यवान जीव है, और बड़ा भाग्यवान जीव, फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट पर्सन, क्योंकि उसने समझा है सच्चा आनंद क्या है। वो और एक थोड़ा महत्वपूर्ण चीज एक है कि एकदम कुछ नहीं देने से एक यूजलेस गिफ्ट भी दे दो चलेगा, पर गिफ्ट तो दो। वो लिखते हैं यूजलेस गिफ्ट, मतलब वैसे हमको तो कुछ काम नहीं आने वाला, ये लो तू लेके जा। एक बार मैं अपना हर साल में एक बार मैं अपना कबर्ड साफ करता था, सो कबर्ड साफ करता था तो गुरुकुल के बच्चों को बुलाता था, थोड़ा मदद करो हमको, तो सब साफ करने के बाद छोड़ बच जाता था, उसको वैसे भी उठा के फेंकना है, बोले ए बच्चों इधर आओ, चलो ये लो, सब लोग ले लो, ठीक है लेते थे, पर उनका चेहरा देख के मालूम आता था, मालूम है ये सब फेंकना है वैसे भी, इसीलिए हमको दे रहे। उनको मालूम आता उनका चेहरा, ऐसा कुछ नहीं कि इतना प्रभु जी हमको कुछ दे रहे, भले अच्छी चीज था वो, पर उनको मालूम था कि सब प्रभु जी ने अच्छा अच्छा चीज रख लिया, जो उनको नहीं चाहिए साइड में रखा है, अभी फेंकने के बदले हमको दे रहे। तो कम से कम वो स्वीकार करते थे, उनको अच्छा लगता था, चलो दिया। पर जब कर्तव्य के रूप में कुछ देते हैं उससे भी अच्छा है, पर जब सोचते हैं किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो सोचते हैं कि उसके लिए अच्छा है, ये बहुत उपयोग होगा, ये होगा, थोड़ा रिसर्च करके बांध ले, और उसके सबसे ज्यादा उसकी चेहरा दिखता, अरे यही मैं सोच रहा था एक्चुअली, हमको भी अच्छा लगता है और उसमें प्रेम बढ़ता है। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स ये बड़ा विज्ञान है, ये अपने आप में परफेक्ट साइकोलॉजी है इसके पीछे, और हम समझ सकते हैं
कृष्ण भावनामृत एक एक्चुअली विज्ञान है, इट इज नॉट सेंटिमेंट। लोगों को लगता है कि सब भावुकता है बस। अब देखिए बड़े महान आचार्यों ने कितने सिस्टमैटिकली हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए, मदद करने के लिए पूरा सूत्र के रूप में सब दे के रखा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आप इसको पढ़ो, इन पुस्तकों को पढ़ो और जानो कि कैसा आनंद कृष्ण भावनामृत में है, और इसको अपनाओ और इसको बांटो। और दुर्भाग्यवश इतना बड़ा खजाना है हमारे घर में, हम इसका आनंद नहीं, इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे। तो कृष्ण भावना विद अ परफेक्ट साइंस, और क्योंकि प्रभुपाद ने उस विज्ञान को अप्लाई किया, प्रैक्टिकल रिजल्ट देखो आप। 10 साल के अंदर एक व्यक्ति ने पूरे प्रेम से इतना बांटा, तो उसके आदान प्रदान में आज भी 35 साल बाद जब उनके शिष्य प्रभुपाद जी के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। बोलते उस व्यक्ति को हम क्या दे सकते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, हम जैसे बद्ध जीवों को उठाने के लिए सिर्फ त्यागी त्याग किया उन्होंने, क्या दे सकते हैं हम लोग। 35 साल के बाद एक उनके साथ मीटिंग, प्रभुपाद ने हमको ऐसा देखा, ऐसा मुस्कुराया। और कभी देने में हिचकिचाया नहीं, कृष्ण भावना देने में। और बाद में कहते हैं कि लेने के बारे में भी, लेना एक विज्ञान है, ददाती हो गया प्रतिगृहणाति, लेना भी एक विज्ञान है। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम दिखा रहे हैं कि हम इस संबंध को हम स्वीकार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम स्वीकार कर रहे हैं, उस उपहार को स्वीकार कर रहे हैं, उस उपहार के पीछे जो भावना है उस भावना को हम स्वीकार कर रहे हैं, उस व्यक्ति को हम ट्रस्ट विश्वास करते हैं। अब बाहर के बाहर आप कहीं जा रहे हो सड़क पे और कोई बोलेगा ये लो खाओ लड्डू, खाएगा तुम? क्या पता नहीं क्यों जहर दिया होगा, खाने के बाद सब कुछ उठा के ले जाएगा ये। अब नहीं तो किसी का उपहार स्वीकार कर रहे हैं, मतलब हम उस व्यक्ति को विश्वास रखते हैं, उसका प्रेम आदान प्रदान स्वीकार कर रहे हैं। और इस तरह से वो रिश्ता एक स्थापन हो जाता है। और कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता, प्रभुपाद जी ने भी जिस भक्तों ने भी उनको कुछ भी उपहार दिया बड़े कृतज्ञता पूर्वक उसको स्वीकार करते थे और बार बार धन्यवाद देते थे, याद रखते थे और धन्यवाद देते थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। जैसे छोटी छोटी चीजें भी उसको, उसको उसका परवाह करना, क्योंकि वो एक उपहार जब है वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है, करता है, और उस चीज को हम जैसा हैंडल करते हैं उस रिश्ते को और उस व्यक्ति के साथ हमारा ऐसा रिश्ता है, इसका संबंध सूचित करता है वो एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी को अगर कोई एक फूल लाके देता था तुरंत उसको एक पानी का ये लाके उसमें रखते थे, किसी ने कोई पिक्चर लिया तो उसको तुरंत फ्रेम लगा के लगा देते थे। एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को एक ये लाके दिया, घड़ी लाके दिया जो अलग अलग देशों का टाइम दिखाता था, तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने अपना घड़ी निकाल के दे दिया वो घड़ी ले, और किसी एक भक्त ने उसका गुणगान किया, प्रभुपाद जी वो घड़ी बहुत अच्छा है निकाल के उसको दे दिया। और जिन्होंने भी बहुत जरूरत में जब उनको मदद किया, प्रभुपाद कभी नहीं भूले। जयानंद प्रभु जो बड़े इंजीनियर थे पर टैक्सी चलाते थे, सुबह से शाम, सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक टैक्सी चलाते थे, और जितना भी पैसा आता था एक पैसा रखे बिना लाके प्रभुपाद जी को देते थे। पहला रथ यात्रा शुरू करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। मंदिर के प्रेसिडेंट थे, मंदिर में कभी दिखते नहीं थे, ब्रह्मचारी लोग रहते थे, ये पूरे दिन भर काम करते, टैक्सी चलाते, पैसा लाके उनको देते थे। और उतना भी नहीं, उनके लिए जो खाना वाना रखा जाता था, कोई ऐसे सो गए रहते तो रात को उठा के उसको खिला देते थे। लास्ट में उनको ब्लड कैंसर कुछ हो गया था, ब्लड कैंसर में अभी मरने के कुछ दिन बाकी बचे, तो किसी भक्त ने उनके लिए, श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज ने उनके लिए एक स्वीट का एक डब्बा ला के दिया, स्वीट का डब्बा ला के उनको सामने रखा प्रसाद का, और कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन करने लगे। बोले करता लाया क्या? हाँ। बोले आंख बंद करके कीर्तन करो। बोले कीर्तन करो दो। तो श्रीधर महाराज आंख बंद करके कीर्तन कर रहे, तो 10 मिनट कीर्तन के बाद धीरे से आंख खोल के देखे क्या कर रहे, कीर्तन कर रहे थे तो सिस्टर डॉक्टर सब आ गए, सबको बांट रहे थे प्रसाद, बांट रहे। उनको प्रसाद में इतना विश्वास था कि जो भी ये प्रसाद खाएगा, मतलब अमेजिंग। तो लास्ट तक उनका जो योगदान प्रभुपाद जी कभी मत नहीं भूले। शुरू शुरू में प्रभुपाद जी के जब उतना पैसा नहीं था उनके पास, उनको कृष्णा बुक छापना था, तो $19,000 इन्होंने दिया जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन ने $19,000 उस समय मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा। श्याम सुंदर प्रभु को बोले प्रभुपाद जाके मांगो उसको, जनरली प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं मांगते थे, पर उनको जरूरी था कि कृष्ण बुक बांटना चाहिए लोगों को और हजारों हजारों में बटना चाहिए। तो उन्होंने, और श्याम सुंदर प्रभु ने वचन लिया था, मैं कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगूंगा, खास करके ऐसे बड़े लोगों से, बहुत हिचकिचाते थे, पर प्रभुपाद जी ने आज्ञा दिया पूछना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बड़े हिचकिचाहट के साथ वो गए और बैठे, बड़ा महल है उनका, आज भी भक्ति विधान मैनर लंदन में जाएंगे, 17 acres का बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा पैलेशियल बिल्डिंग है। गए और किसी तरह से मांगे तो थोड़ा दिए, मांगे वो हिचकिचा रहे थे, मांगना है कैसे मांगू कैसे मांगू कैसे मांगू, पर गुरु महाराज की आज्ञा भी है तो बोले कैसे मांगू कैसे मांगू। फिर प्रसाद लिए, प्रसाद लेने के बाद जाने का टाइम हो गया, बोले अभी तो मांगना ही पड़ेगा। बड़े हृदय में पत्थर डालकर उन्होंने कहा कि जॉर्ज आपसे कुछ मेरे को बोलना है। बोला क्या? बोले हमारे गुरुजी ने बोला, प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद ने देखा कि श्याम सुंदर इतना सीधा साधा आदमी है, ये बोलने नहीं वाला, तो उन्होंने बोला मेरे को बुरा आदमी बनाओ, बोलो मेरे गुरुजी ने मांगा है, मेरा नाम बदनाम करो चलेगा, पर मांगो मांग के देखो। तो बहुत ही चिता कर कहा सुनो प्रभुपाद है ना, उन्होंने बोला है कि कृष्ण बुक छापने के लिए $19,000 चाहिए। हाँ करके जॉर्ज हैरिसन थोड़ा रुके, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके पास जो भी आता है उसको मालूम है क्यों आया है। तो इसलिए श्याम सुंदर प्रभु ने वचन लिया था कि मैं इससे एक पैसा कभी नहीं मांगू, सिर्फ इसको कृष्ण भावना दूंगा बस, और अपने आप कुछ देगा तो देगा चलेगा। पर ये बड़े कठोर नजर से पूछे, पूछने के बाद तुरंत उनका चेहरा देखा तो इनको लगा अच्छे उसको अभी समझ में आएगा, ये भी मेरे पीछे इसीलिए आया है। पर और वो सोच रहे थे क्या बोलेगा क्या बोलेगा, एकाएक लाइट चला गया, पूरे बिल्डिंग में लाइट चला गया, और इतना जोर से एक बिजली गिरी एकदम बिल्डिंग के बगल में, अगर वो बिल्डिंग में गिरा होता दोनों तो खत्म हो गया, बिल्डिंग में खत्म हो गया होता, इतना जोर से बिजली बगल में गिरा, और थोड़े समय के बाद लाइट आया। तो जॉर्ज हैरिसन ने श्याम सुंदर प्रभु की ओर देखा और बोला व्हाट कैन आई से आफ्टर दिस, अब इतना होने के बाद अब मैं क्या बोलूं, मतलब उन्होंने स्वीकार किया, मतलब कृष्ण ने डायरेक्टली बोला देख अभी नहीं अभी खत्म खेरे हो गया होता ये मेरा शुद्ध भक्त दे दे, मतलब अंदर से कुछ पूर्ति और दिए। प्रभुपाद ने उनको बोला, जॉर्ज हैरिसन को बोला कि आप इसका इंट्रोडक्शन का जो प्रीफेस आप लिखो, और उन्होंने सुंदर लिखा। और चूंकि जॉर्ज हैरिसन उस समय देवता जैसे पूजे जाते थे, उस समय में 1965-66 में लोग पागल थे ऐसे रॉक स्टार्स के पीछे, उसको तो देवता जैसे पूजते थे ऐसे लोग, तो उनके नाम देखकर हजारों पुस्तक बिक गए, हजारों लोग भक्त बने। आज भी श्रीधर महाराज और लोग सब एक बार बता रहे थे उनके बारे में, बोले हजारों लोग भक्त बने पुस्तक खरीदे सिर्फ उनके। प्रभुपाद जी शरीर छोड़ते वक्त 1977 में, 1977 में सोचिए प्रभुपाद जी एक विश्व आंदोलन चला रहे हैं, विश्व भर के आंदोलन, हजारों हजारों शिष्य, कितने मंदिर हैं, कितने लोग उनको निकटतम बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े गृहस्थ, कितने लोग उनके प्रिय हैं। पर मृत्यु के एक दो दिन पहले धनंजय नाम के एक भक्त हैं लंदन में, उनको बुलाए, बोले धनंजय इधर आओ। और उन्होंने एक सोने का एक अंगूठी पहना था, किसी ने उनको दिया था, वो सोने का अंगूठी निकाले और बोले ये जॉर्ज हैरिसन को दे। मतलब हजारों लोगों में मृत्यु के समय एक शुद्ध भक्त जाने से पहले वो सोच रहा है कि मेरे को सबसे जब जरूरत थी इस व्यक्ति ने मुझे मदद किया था। और उनको क्या मदद किया, प्रभुपाद को क्या जरूरत था, कुछ नहीं था, मेरे गुरु महाराज की सेवा में इसने मुझे इतना मदद किया था। मृत्यु के समय भूले नहीं, कृतज्ञता पूर्वक रिसीविंग द गिफ्ट, मतलब कभी भूले नहीं, जो भी व्यक्ति थोड़ा भी मदद किया था कभी भूलते नहीं थे, बार बार उसको याद करते थे, बार बार उस व्यक्ति को धन्यवाद देते थे और हृदय से उसका मतलब उसकी उसके लिए प्रार्थना करते थे। और हम देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त के व्यवहार से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से छह प्रकार के आदान प्रदान। प्रभुपाद की जीवनी को आप पढ़ेंगे, एक्चुअली एक तो प्रभुपाद लीलामृत है पर खास करके उनके दूसरे जो हरिशौरी प्रभु और शुद्ध कीर्ति प्रभु और गुरुजन प्रभु, जो भी उनके निकटतम शिष्य रहे, उनके सेवक, उनके सेक्रेटरी रहे, उन्होंने जो लिखा है छोटी छोटी बातें उनका आप देखिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना महाजनों का सपन था, तो दो प्रकार के महाजन, पुराने महाजन और नए महाजन। नए महाजन में अगर आप प्रभुपाद जी के जीवन देखेंगे डायरेक्टली इस तत्वों को कैसे उन्होंने उतारा, इसको हम समझ पाते हैं। इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। अच्छा, और उपहार देना सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक भौतिक उपहार देना भी जरूरत नहीं है। उपहार अलग अलग प्रकार का होता है, अच्छे शब्द, चार शब्द उस किसी का गुणगान करना, ये भी एक उपहार देना उसको वर्बल। एक तो हो गया फिजिकल, फिजिकली हमको एक गिफ्ट दे रहे हैं, पर उतना भी जरूरत नहीं। हम बोलेंगे क्या किसको किसको क्या क्या गिफ्ट दे, जरूरत नहीं। एक भक्त को एक अच्छे चार शब्द कहना कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद, ये उसको कितना अच्छा लगता है। कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों में हम उस पर लापरवाही कर देते हैं, समझ नहीं पाते। किसी का गुणगान करना, किसी का अप्रिशिएट करना कुछ सेवा, या सिर्फ वैयक्तिक रूप से, जैसा कोई समझ लीजिए कोई हॉस्पिटल में आप सिर्फ गए और उसके सामने खड़े होकर बोले आ रहा है मुझे पता लगा कि आपको तकलीफ हुआ, सिर्फ देखने के लिए आया, वो भी एक उपहार दे रहे हैं आप उसको। अपने वैयक्तिक रूप से आप वहां जा रहे इतना समय निकालकर एफर्ट कर उसको कितना प्रसन्न होता है, प्रेम का लक्षण है एक्चुअली। छोटी सी बातें हैं ये भी बहुत बड़ी उपहार है, उससे प्रेम बढ़ता है एक आपस में। प्रेम मतलब एक्चुअली इट्स नॉट हाउ यू केयर अबाउट दैट पर्सन। आपका ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना श्लोक बोल सकते हैं, आपको कितना श्लोक पूरा आता है, कितने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, सचमुच में उस भक्त के प्रति कितना हमारा परवाह है। काल जी जो बोलते हैं सच्चा संबंध है कितना हम एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं, वो जो चीज है वो घना संबंध बनाता है। और ये छह आदान प्रदान उसके बाहर के प्रतिनिधित्व करते हैं एक्चुअली। और संग देना, कुछ अच्छा संग देना, कुछ खुश खबर देना, अरे कुछ नहीं तो एक मुस्कुराना, क्या तकलीफ है, कितना खर्चा होता है, सिर्फ एक मुस्कुरा, किसी को देखा मुस्कुरा तो सही, कम से कम क्या जाता है उसमें, उसमें भी कंजूसी क्यों, तुम भी खुश होगे। और कुछ लोग एक लाफिंग क्लब है, बोलते जितना हंसोगे उतना अच्छा है, मुस्कुराने में क्या तकलीफ है। एक फोन कॉल करना, एक कार्ड भेजना, छोटा सा चीज, पर ये छोटी छोटी अगर भक्तों के बीच, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े महान भक्तों के बीच, जरूरत नहीं है गुरु के साथ ही होना है, अरे हर एक वैष्णव के साथ छोटा 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 चीजें। मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है, अपने बारे में भूलकर दूसरों के बारे में ज्यादा हमारा बढ़ता है। और जितना हम दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, कृष्ण हमारे बारे में सोचेंगे, और जितना हम हमारे बारे में सोचेंगे, कृष्ण बोलते तू अपने बारे में तो सोच रहा है, मैं अभी दूसरों के बारे में सोचूंगा, तेरे बारे में सोच के क्या फायदा, तू अपने तो बहुत ही इच्छा कर रहा है। तो एक्चुअली स्वीकार करना, देना, ये छह आदान प्रदान में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी, ददाती, प्रतिगृहणाती, स्वीकार करना भी नम्रता है, कृतज्ञता पूर्वक, थैंक यू वेरी मच। गुह्यम आख्या दिपृच्छति, हृदय खोलने के लिए नम्रता होनी चाहिए। क्यों खोलेगा, दुनिया को क्या मालूम, सबको लगने दो ना मैं महान भक्त हूं, अगर सब मेरा सब जो कमियां हैं वो किसी को बोल दूंगा तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया को ढिंडोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है, आपकी कमियां क्या है वो सबके अंदर है, सबको मालूम है, पर हम अपनी कमियां को समझना चाहते हैं, उसको दूर करना चाहते हैं और उस प्रगति करना चाहते हैं, तो किसी के सामने हृदय खोलना मतलब बड़ा नम्रता चाहिए उसके लिए, अहंकार पे चोट लगता है। पृच्छति, पूछना किसी से, मुझे नहीं मालूम, किसी नहीं मालूम करके पूछना मतलब नम्रता चाहिए, लोगों को लग सब नहीं, इसको तो सब मालूम है, भूखते ही भूल जाते। तो इस तरह से ये जितने हम आप गहराई में आप ये जाएंगे उतना हम देखेंगे कि ये कितना वैज्ञानिक है ये आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति करना। अंत में एक चीज हमारे एक भक्त इसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे, वो बता रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, लोगों को समझने की कोशिश करना, इच्छे आदान प्रदान का मतलब है तो उनको समझने की कोशिश करना, अपने आप को विस्तृत करना, थोड़ा एक्सटेंड करना ये, और दूसरा चीज बोल रहे थे सेंसिटिविटी बन जाता है, थोड़ा सेंसिटिविटी बढ़ता है हमारे अंदर, किसी को तकलीफ है, किसी को जरूरत है, क्या है, तो सेंसिटिविटी बढ़ता है कि अगर मैं उस स्थिति में होता तो मेरे को कितना तकलीफ होता, ऐसा सोचने का जो थोड़ा हमारा जो चेतना है विकसित होता है, विस्तृत होता है थोड़ा, और इस तरह से हम एक्चुअली प्रगति कर सकते हैं। एनीवे ऐसा बहुत कुछ है पर सिर्फ 5 मिनट बचा है, तो इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है या कोई सजेशन, क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आज लास्ट दिन है तो यस माइक है क्या? एक्चुअली भगवान और महाभागवत के अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ सबके साथ उसका एकदम भगवान परमात्मा के रूप में सबके साथ प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, और महाभागवत जैसे भक्त भी हो गए शायद स्वाभाविक है कि ऐसा एक ही दिन के अंदर ऐसा सब नहीं होगा, पर हमको ये भी समझना चाहिए कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, एकदम स्वार्थी बनने से अच्छा आदान प्रदान करने से प्रेम बढ़ाना, और क्यों बढ़ाना है, हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम भक्तों के बीच रहना है, हमको प्रगति करना है, और स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति के प्रति एक ही तरह का रिश्ता नहीं बन सकता, सजातीय बोलते उसको, किसी के साथ अच्छा स्वाभाविक रूप से किसी का अच्छा हमारा जमता है और किसी के साथ ठीक है अलग अलग, तो स्वाभाविक है ऐसा है, अलग अलग लोगों का स्वभाव अलग अलग हो सकता है। पर एक बड़ी संस्था है और इस संस्था को चलाना प्रचार करने के लिए हमको एक साथ रहना जरूरी है। हम थोड़े दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे, जब हम एक सपोज भारत और कोई बगल देश का लड़ाई चल रहा है, जब लड़ाई चल रहा है तो जिस भारतीय सेना है उसमें एक एक जो सैनिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और जब लड़ाई में हर एक सैनिक हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं हम कब चोटी था, किसी का कब मदद चाहिए। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये महाप्रभु की सेना है, और हमारे युद्ध किससे कर रहे हैं, पूरी दुनिया से, माया, माया के साथ हमारा युद्ध है। तो आसपास में हम ही लोग झगड़ते रहेंगे तो वो प्रचार क्या होगा। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा, यू विल शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। आप मेरे से मुझको अपना प्रेम दिखाओगे, अगर आप सचमुच में कृतज्ञ हो कि प्रभुपाद ने हमको इतना दिया है और प्रेम दिखाना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। अब कोऑपरेशन के अलग अलग स्तर होते हैं। पहला स्तर है कम से कम एक दूसरे को जान से मत मार डालो। कम से कम ऐसा कि नहीं चलो हो जाए तू या मैं, कम से कम जान से मत मार डालो, पहला। दूसरा स्तर का कोऑपरेशन और थोड़ा उच्च श्रेणी का वो है, कम से कम पब्लिक में खड़े होकर झगड़ा मत करो एक दूसरे के ऊपर। तीसरा स्तर का कोऑपरेशन है पब्लिक में, मतलब प्राइवेट में थोड़ा ठीक है, ऐसा ऐसा क्यों ऐसा क्या तो कुछ भी है ठीक है, या धीरे धीरे सहन करो, ठीक है ऐसा होता है, चार लोग साथ में आते हैं तो हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है, हमारा एक वैष्णव स्वरूप है और एक हमारा बद्ध स्वरूप है। जब वैष्णव स्वरूप सामने आता है ना, त्रिनादापि सुनिचे ना, तो बड़ा प्रेम रहता है, पर दोनों का जो बद्ध स्वरूप सामने घिसता है तो दो चीज घिसता है तो थोड़ा स्पार्क निकलता है, वहां से होता है ऐसा कभी, तो उनको समझना चाहिए हमेशा थोड़ा वैष्णव स्वरूप सामने रखना चाहिए, वैष्णव आचार को सामने रखना चाहिए। इस तरह से किस क्यों क्यों ऐसा जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कुछ, दो चीज भक्ति तीर्थ महाराज कहते हैं कि अगर दो लोगों का कुछ कुछ झगड़ा है या कुछ जमता नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मतभेद है, तो आपको मालूम होगा जब मैं छोटा था, हम लोग छोटे थे तो आप भी पढ़े होंगे पता नहीं, स्कूल में चार पिक्चर का एक फोटो होता था, एक चार्ट ऐसा, उसमें चार पिक्चर में एक स्टोरी होता था। एक पिक्चर ऐसा था, दो बकरी साथ में आए, एक छोटा सा ये है नाला पानी का और उसको क्रॉस करना है, एक लकड़ी का पट्टा है उसके ऊपर, तो दो बकरी इधर आए, दोनों बकरी आगे पीछे नहीं जाने वाले बकरी दोनों, और दोनों सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, पहले मैं जाऊंगा पहले तू, और दूसरा पिक्चर दिखा था दोनों लगड़ रहे झगड़ रहे, और तीसरा पिक्चर दिखा था दोनों डूब गए, और चौथा पिक्चर दिखाता है एक बकरी थोड़ा झुक गया, दूसरा ऊपर से गया, फिर ये चला गया। तो भक्ति तीर्थ महाराज अपने कॉन्फ्लिक्ट बुक्स में लिखते हैं कि ये मैं इस बकरी का उदाहरण से कह रहा हूं, जो बकरी झुकता है ना वो सीनियर है। क्यों सीनियर है? क्योंकि उसका दृष्टिकोण बड़ा है, वो जानता है कि दोनों को क्रॉस करना है, वो एक बड़ा दृष्टिकोण रख रहा है, वो सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि मैं पहले जाना है, बोले दोनों को तू इधर जाना है मैं उधर जाना है, ठीक है। दो तरीका हो सकता है, मैं तुझे झुका के ऊपर से जा सकता हूं, झुका के ऊपर जाऊंगा तो बाद में तू गाली देगा मेरे को झुका के चला गया, ठीक है मैं झुकता हूं तू ऊपर से जा और फिर मैं जाऊंगा, तो मैं भी गया तुम भी गया और जाने के बाद सोचेगा अरे वाह उसने झुका, सही नहीं मानना पड़ेगा। क्यों झुका? क्योंकि वो उसका दृष्टिकोण बहुत बड़ा था, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं दोनों का कैसे भलाई हो। तो इस चले से सीनियोरिटी का मतलब है, मैच्योरिटी का मतलब है सीइंग द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड टेकिंग ए हम्बलर पोजिशन। यह मैच्योरिटी का लक्षण है। एक ऊंचा चीज दृष्टिकोण को रखो कि हमको बहुत बड़ा ये, हमको एक छोटा लड़ाई जीतकर युद्ध हारना नहीं है, हमको युद्ध जीतना है, भले लड़ाई हम हार जाए, तो एक नम्र स्थिति ले लो, उसमें कोई कमी नहीं होता। ठीक है भाई, तुम सही है मैं गलत, ठीक हो गया, पर बाद में समझ में आएगा लोगों को कौन सही था कौन था अपने आप। तो इस तरह से वो एक प्रकार का कोऑपरेशन हुआ, प्रभुपाद की इच्छा को समझकर, और ये आंदोलन अच्छा चलना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए संस्था, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। और चौथा सबसे श्रेष्ठ है कि धीरे धीरे वो उसका जो जड़ है, जड़ में से हटाकर एक्चुअली प्रेम का संबंध स्थापित करें। वो इतना आसान नहीं है सबके प्रति, होगा धीरे धीरे होगा, क्योंकि हर प्रकार के लोग समाज में, हर स्तर के लोग हर स्थिति में हमेशा रहेंगे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमेशा ऐसा मनुष्य का, समाज का स्वभाव ही ऐसा है, अलग अलग प्रकार के लोग। पर इसीलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है विज्ञान, और फिर उसको इंटेलिजेंटली मैच्योरली अप्लाई करना। तो कम से कम मैं किसी के साथ मैं नहीं जमता, इतना तो नहीं होना चाहिए, कम से चार लोगों के साथ तो कर। इसका मतलब है हमने किसी का भी कोशिश ही नहीं किया। धीरे 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 कोशिश कीजिए, धीरे 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 होगा ऐसा, और कोशिश करेंगे तो भगवान को बुद्धि देंगे, भगवान को शक्ति देंगे कैसा करना है, और इस तरह से और अपने आप में एटलीस्ट शुद्ध होने की कोशिश करना है कि प्रभु ये सब गलती मेरे अंदर है, एक्चुअली दोष हमें देना चाहिए कि मेरे अंदर इतने गलतियां हैं कि मैं सब में वही ढूंढ रहा हूं, कृपया मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे थोड़ा नम्र बनाइए, मुझे थोड़ा सहनशील बनाइए, मुझे सबको मान देने की शक्ति दीजिए, और मान प्राप्त करने की जो इच्छा है दूर कीजिए। ऐसा अगर प्रार्थना रहेगा तो भगवान हमको शक्ति देंगे, बुद्धि देंगे, एम्पावरमेंट होगा, सब होगा। कम से कम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए, तो फिर वो वातावरण जो है उस हद तक एक वैकुंठ का वातावरण बन जाएगा। और जिस हद तक हम लोग हमारी मूल प्रकृति भौतिक बुद्धि को छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारी चेतना भौतिक रहेगी, तो भौतिक संसार ही नजर आएगा सब जगह, जहां भी देखेंगे ये देखो ये गलती वो गलती नजर ही आएगा, नजर आएगा। अच्छा देखने की कोशिश करेंगे तो भगवान वो बुद्धि देंगे, दृष्टिकोण देंगे, तो वो ग्रेजुअली होगा। कम से कम सीखना चाहिए कैसा कैसा करना, धीरे 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 होगा, एक दिन की बात नहीं है, इट्स ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। कृष्ण भावना भावित होना, भगवत धाम जाना, इट्स ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, लाइफ टाइम्स प्रोजेक्ट। बहु नाम जब बहुत जन्म लग जाएंगे शायद, बट फिर भी हमको चलता, उत्साह निश्चय धैर्य, ठीक है। एक प्रश्न, वन लास्ट क्वेश्चन, रूप विलास प्रभु आइए, ऐसा लिखा रहता है क्या? अरे उन्होंने इनविटेशन दिया है, आप अपने आप को वहां पहुंचा दीजिए, काफी है, वही गिफ्ट है। यू वांट टू से समथिंग? कुछ दिन पहले हमारे काउंसलर ने मुझे फोन किया, उनके लड़के की शादी है, बोले मैं क्या करूं, बोले मेरे से मत पूछो भाभी, मैंने किसी का कराया भी नहीं, मेरा खुद का भी नहीं। तो इतने बड़े बड़े सीनियर महारथी काउंसलर हैं जिनके बहुत सारे बच्चे शादीशुदा हैं, उनसे पूछो आप। नहीं, बट द स्पिरिट इज टू बी अप्रिशिएटेड। सबसे पहले उनको आपने, उन्होंने आपको याद किया, अब वो चाहते हैं कि आप उनके यहां आए, और गिफ्ट उन्होंने दिया क्या, उपहार दिया कि इनविटेशन भेजा आपको, दैट इज हिज गिफ्ट, एंड योर गिफ्ट इज यू रेसिप्रोकेट बाय एक्नॉलेजिंग दैट लेटर कम से कम, और इफ यू कैन गिव द गिफ्ट ऑफ योर एसोसिएशन, योर प्रेजेंस, दैट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट एक्चुअली. इट इज जस्ट टू गिफ्ट जो है ना, अपने हृदय की जो अप्रिसिएशन है वो प्रतीक है उसका एक्चुअली. तो सिर्फ ऐसा आदान प्रदान करना और सिर्फ वहां जाना भी, जैसा मैंने कहा नॉन फिजिकल गिफ्ट्स, ए स्माइल, ए फोन कॉल, ए कार्ड, योर फिजिकल प्रेजेंस, ए फ्यू वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, प्रेज, व्हाटएवर, जो भी यू आर सेइंग. प्रभु जी को माइक दीजिए, कमेंट दे रहे हैं. सच्ची सच प्रभु बहुत अनुभवी है इन चीजों में.
जैसे आपको बता रहे थे कि कार्ड में से छपता है, सही है, लेकिन उसके पहले वो रही क्लियर है कि गिफ्ट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन यू.
हां तो मतलब
नहीं, बाहर से भी देखा आशीर्वाद के रूप में आपका गिफ्ट है. अच्छा अच्छी बात है,
जाके दे दीजिए.
और एक ये है कि अगर सुंदर भक्तों में भी ऐसा है कि बहुत सारे भक्त ऐसे लिखते हैं गिफ्ट नहीं चाहिए, जैसे मेरा एक अनुभव है कि कृष्णचंद्र की लड़की राधा मंडली उनका विवाह था और विवाह में लेकर तो पहले ही कोई ने बोला था नो गिफ्ट, जब कार्ड देता तो भी बोलता रिसेप्शन पर तो भी बोला कि नो गिफ्ट. तो मैं स्टेज पे गया और मैंने गिफ्ट आगे किया प्रोजी को, मतलब मुकुंद को दिया, राधा मंडली के नाम से. फिर राधा मंडली ने बोला कि आप खुद ने पहले बोला था गिफ्ट नहीं दिए, फिर गिफ्ट दिए, बोला एक बार खोल के देखो नीचे मैं वापस दे रहा हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा है और संस्कृत में कितना अच्छा नहीं पड़ा कि बाद में महाराज को कृष्ण ने बताया कि ऐसे ऐसे गिफ्ट नहीं बोला कि तुझे एक गिफ्ट आया तो बड़ा प्यारा गिफ्ट है. महाराज ने बोला क्या है, बोला हैप्पीनेस दैट हैप्पी देने से सर, महाराज को कितना चाहिए मेरे को तो कितना चाहिए कुछ, मतलब ये ग्रस्त का ये बनाना है उसके लिए कितना. तो प्रभु जी मेरे वाले बता रहे अरे वो गिफ्ट तो असली गिफ्ट निकला,
आइडिया इज डोंट वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स. कभी कभी लोगों को बहुत टेंशन रहता है, बाप रे भी क्या देना उसको, सबके सामने ये दूंगा तो क्या समझेंगे कि इतने छोटा सा दिया है बड़ा दिया है. बोले कोई चिंता नहीं, आप आ जाओ बस आराम से, कोई निश्चिंत होकर आओ, आपका आपका आना बहुत जरूरी भावना वो है एक्चुअली. ओके तो थैंक यू वेरी मच. और बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार चार दिवस शाम को और प्रसाद भी नहीं था फिर भी इतने दूर से आप लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपना मौजूदगी का उपहार हमें दिया है और अपना मैं अपनी बुद्धि से जितना हो सके थोड़ा कोशिश किया प्रतिग्रहणादि करने में, कि थोड़ा बहुत इधर उधर जो मैंने उपहार इधर उधर से स्वीकार किया है आपके साथ बांटने के लिए. वैष्णव लोग हैं आप लोग, बहुत प्रसन्न होंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय. निताय गौर प्रेमानंद.
हरे कृष्ण. सर्वभक्तांना माझी एक छोटीशी विनंती आहे की फक्त 5 मिनिटं कृपया कृपया सगळ्यांनी थांबावं, कारण काही अतिशय महत्त्वाच्या अशा आपल्या कोल्हापूर. Thank you.